Jai Jai Radhe Krishna Krishna, Radhe Krishna, Krishna Krishna, Radhe Radhe. Radhe Shyam, Radhe Shyam, Shyam Shyam, Radhe Radhe. Shyam Shyam, Radhe Radhe, Radhe Krishna, Radhe Krishna, Krishna Krishna, Radhe Radhe. Radhe Shyam, Radhe Shyam, Shyam Shyam, Radhe Radhe. Shyam Shyam, Radhe Radhe. Jai Jai Shyam Shyam, Radhe Radhe. Radhe Radhe Radha Krishna Bhagavan Ki Jai. Sadgurudev Bhagavan Ki Jai. Satchidananda Bhagavan Ki Jai. Sanatan Dharma Ki Jai. Swami Shri Prempuri Ji Maharaj Ki Jai. Om Namah Parvati Patay Hara Hara. श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद के अंतर्गत भगवान कपिल का जो माता देवहूति के प्रति उपदेश है आप लोग श्रवण कर रहे हैं। योगाध्यात्मिक पुंसा मतो निःश्रेषाय मे अत्यंतोपरतिर यत्र दुखस्य च सुखस्य च। आध्यात्मिक योग भगवान कहते हैं मेरे निश्चय के अनुसार उस परम गति को प्राप्त करने के लिए एकमात्र उपाय है। श्रुति जिसके विषय में कहती है नान्या पंथा विदिते अनाय, इसके अतिरिक्त और कोई दूसरा मार्ग दूसरा रास्ता नहीं दिखता। अत्यंतो परित्रियत्र दुखस्य च सुखस्य च, वो कौन सी अवस्था है, किस मुक्ति की आप बात कर रहे हो, कौन से मोक्ष की बात कर रहे हो, भगवान इसे भी स्पष्ट करते हैं। अत्यंतो परित्रियत्र दुखस्य च सुखस्य च, हम जिस अवस्था की बात करते हैं वो ये वो है जहां सुख और दुख दोनों ही समाप्त हो जाते हैं। दोनों से जो परे अवस्था है या दोनों ही बिल्कुल खत्म हो जाए, जहां हम उस स्थिति की बात कर रहे हैं, ये इस श्लोक का अर्थ है, ये इस श्लोक का मतलब है। योगाध्यात्मिक पुंसा, पुरुष के लिए आध्यात्मिक योग ही मात्र एक उपाय है, किसके लिए, निःश्रेषाय यानी मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए, दूसरे कोई उपाय नहीं। कल मैं चर्चा कर रहा था, ध्यान दिया होगा आप लोगों ने, कि दूसरे साधन जो हैं, चाहे वो भक्ति हो, कर्म हो, योग हो, इनका हमारे महापुरुषों ने निषेध नहीं किया है। चाहे वो वेदांती हो, चाहे कोई भी हो, इन लोगों ने किसी ने भी वेद में वर्णित जितने भी साधन हैं उनमें से किसी भी साधन का निषेध नहीं किया कि ये बेकार है, कि ये नहीं करना चाहिए। सभी एक दूसरे के सहायक हैं। व्यक्ति की योग्यता के अनुसार, व्यक्ति की पात्रता के अनुसार उस व्यक्ति को अमुक अमुक साधन बताए जाते हैं। जरूरी नहीं है, मैं हमेशा कहा करता हूं, जरूरी नहीं है कि हमारे सिर का दर्द जिस दवा से दूर हुआ हो आपके सिर का दर्द भी उसी दवा से दूर हो, यह महत्वपूर्ण नहीं। क्योंकि हमारे सिर का दर्द किसी दूसरी वजह से हो सकता है, आपकी समस्या कुछ और हो सकती है। ठीक इसी प्रकार से व्यक्ति का स्वभाव, व्यक्ति का जीवन, व्यक्ति की क्रियाएं भिन्न भिन्न होने की वजह से सबके लिए उन भगवान ने, परम कृपालु नारायण ने सबके लिए साधन भी अलग अलग तरह के बना दिए। कोई लोग हैं कि आंख बंद करते हैं और वो कहते हैं हमारा ध्यान लग जाता है। कोई है वो कहते हैं कि हम निराकार का चिंतन कैसे कर सकते हैं, तो हमें कोई माध्यम चाहिए, कोई आधार चाहिए कि जिसका हम ध्यान कर सकें, जिसको हम देख सकें। तो अलग अलग लोगों का स्वभाव है, इसलिए महापुरुषों ने अत्यंत सरलीकरण करते हुए प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग साधनों का वर्णन किया। लेकिन ध्यान रखना वे सब साधन है, मात्र साधन है, पहुंचना वही है जहां पर ये भगवान कह रहे हैं योग आध्यात्मिक पहुंचा। आध्यात्मिक योग में ऐसी क्या विशेषता है कि परम शांति तक पहुंचा देता है, अब ये विचार करने योग्य बात है और ये महत्वपूर्ण है। पूरे विषय को अगर जब आप देखते हैं, विचार करते हैं, तो देवहूति समर्पण करती है। देवहूति अपनी इच्छा को नहीं रखती। देवहूति कहती है कि हम परेशान हैं, हम दुखी हैं, हम संसार से परेशान हो चुके, इन इंद्रियों को तृप्त करते करते थक गए, लेकिन हम शांति हमको नहीं मिली। कई काम किए, कई उपाय किए, लेकिन फिर भी वहां हम नहीं पहुंच सके जहां हम चाहते थे, जिसके लिए हमने यहां विवाह किया। अपनी स्थिति को स्पष्ट कर दिया, बस मात्र करना कैसे है आप लेकर के जाओ। ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं। महात्माओं के पास लोग जाते हैं तो वे कहेंगे, महाराज अमुक चीज हमें बताओ। हमें बड़ा दुख होता है कि हमें अमुक चीज सिखाओ। और जहां तक मैं समझता हूं कि हमें साधनों के चक्कर में न पड़ करके सिद्धि को स्पष्ट करना चाहिए। हमें स्पष्ट होना चाहिए कि हम चाहते क्या हैं। और मैं लोगों से निवेदन करता हूं कि आप निश्चय करो पहले कि आपको चाहिए क्या, आपको पहुंचना कहां है। एक महात्मा थे, उनके पास कोई जाता, वो कहता कि महाराज आप हमको दीक्षा दीजिए। बोले बाद की बात, पहले हमें बताओ कि तुम हमसे चाहते क्या हो, अपेक्षा क्या करते हो, तुमने हमें क्या देखा कि तुम हमसे दीक्षा लेना चाहते हो, तुमने हमें पाया क्या कि तुम्हारी श्रद्धा जागृत हुई। मान लो कि हमारी कोई अच्छाई देख करके तुमको लगा कि महात्मा अच्छे हैं, जब दीक्षा ले लो तो मेरा बोलना अच्छा लगा, कि मेरा गाना अच्छा लगा, कि मेरा बैठना अच्छा लगा, कि मेरा कपड़ा पहनना अच्छा लगा आदि आदि। लेकिन मान लो कि आज मैं अच्छे कपड़े पहने हूं तो तुमको अच्छा लग रहा है, कल मैं बुरे कपड़े पहनूं तो खराब लगने लगूं, ये तो कोई बात नहीं हुई। मान लो कि मैं आज अच्छा गाता हूं, कल मेरा गला खराब हो जाए तो तुमको मैं बुरा लगने लगूं, ये तो गुण है, आने जाने वाली चीज है, एक बात। और दूसरी बात, अपने आप को स्पष्ट करो कि तुम्हें क्या अभिलाषा है, तुम्हें क्या अपेक्षा है। अगर तुम कहते हो कि दीक्षा हम इसलिए ले रहे हैं ताकि हमारे संसार के काम बन जाए, ताकि हमारी मुश्किलें आसान हो जाए, ताकि हमारी दुकान चलने लगे, तो महात्मा कहते हैं फिर माफ करो, तुम गलत जगह आए हो, ये ठीक जगह नहीं। जरा कल्पना करो, जरा सोचो आप कि जो व्यक्ति सारे संसार के सुख वैभव को छोड़कर के और परमात्मा की तरफ चला हो, और उस व्यक्ति से हम वही पाने की अभिलाषा लेकर के जाए, कितने बड़े मजाक की बात है। तो महात्मा कहते हैं पहले स्पष्ट करो कि तुम्हें क्या चाहिए। तो कहा नहीं महाराज, हमें संसार नहीं, दुनियादारी नहीं, कुछ नहीं चाहिए, हम तो बस आध्यात्मिकता को लेकर के आए, पूरी तरह से समर्पित होना चाहते हैं। महाराज ने कहा आध्यात्मिकता में भी झंझट है, वो तुम्हें मालूम, हम तुमसे ये पूछना चाहते हैं आध्यात्मिकता तुम किसे समझते हो। भगवान की पूजा करना, आराधना करना, वो भी आध्यात्मिकता के अंतर्गत है। भगवान का एक साकार रूप है जो कि कृष्ण के रूप में अवतरित हुए, राम के रूप में अवतरित हुए आदि आदि, और एक है कि आत्मचिंतन, आत्म तत्व को प्राप्त करने की अभिलाषा लेकर के आना, इन दोनों में से तुम क्या चाहते हो। तो वो सोचने लगा, विचार नहीं कर पाया, समझ में नहीं आया। तो महाराज ने कहा पहले विचार करो अथवा मेरे ऊपर छोड़ दो। लेकिन आदमी इतना भी तैयार नहीं होता, इतना भरोसा कर सके कि छोड़ सके कि नहीं महाराज हम नहीं जानते, जो आपको अच्छा लगे वो करो। मुझे आश्चर्य होता है कि हम डॉक्टर के ऊपर भरोसा कर लेते हैं, वहां हम अपनी बुद्धि नहीं लगाते। कहा कि ये परेशानी है, डॉक्टर पूछता है कि इंजेक्शन लगाएं कि बोतल चढ़ाएं कि दवाइयां दें, क्या करें, तो आप कहते हो आपको जो उचित लगे वो करो। वहां हम अपनी बुद्धि नहीं रखते, वहां हम कहते हैं कि हमारा दर्द दूर हो, हमारी समस्या दूर हो, आपको जो उपाय करना हो सो करो। डॉक्टर को हम इतनी छूट देते हैं, लेकिन गुरु को हम इतनी छूट नहीं देते। जहां हम सबको समर्पण करते हैं वहां वो इतनी छूट नहीं देते कि आपको जो मर्जी हो सो करो। ऐसा नहीं, हम वहां शर्तें रखेंगे, अच्छा अगर आप ऐसा कर ले तो ज्यादा बढ़िया है, अगर आप ये बताते तो ज्यादा बढ़िया है, ये अनुकूलता हो तो ज्यादा बढ़िया है। संत कहते हैं कि स्पष्ट करो तुम्हारा उद्देश्य क्या है। मैं हमेशा लोगों से कहता हूं कि आप आध्यात्मिक बनने से पहले अपने मन में पूरी तरीके से, पूरी तरह से निश्चयात्मक हो जाओ कि तुम्हें चाहिए क्या, पहले बता दो। मैं तुम्हारे सामने नमक और शक्कर दोनों रख देता हूं और मैं तुमसे पूछूं कि तुम्हें क्या चाहिए, पहले निश्चय करो। शक्कर तुम्हें चाहिए, नमक तुम्हें चाहिए, और तुम कहो कि शक्कर, तो परीक्षण कर लो इन दोनों में से कि कौन है, अपने आप वैराग्य हो जाएगा। लोग कहते हैं साधन चतुष्टय से संपन्न हो, मैं कहता हूं कि आप एक निश्चय बना लो कि तुम्हें चाहिए क्या, सारी की सारी साधनता अपने आप आ जाएगी, सारा का सारा विवेक, सारा का सारा वैराग्य, सारी की सारी ये जो षट संपत्तियां हैं अपने आप दौड़ते दौड़ते पीछे पीछे तुम्हारे भागेंगी कि कहां हो तुम, ढूंढ लेंगे साधन। तुम कहते हो मन अभी परमात्मा में लगता नहीं, लगेगा भी नहीं, ये भी शाश्वत सत्य समझ लेना आप, बुरा मत मानना, नहीं लगेगा क्योंकि हम स्पष्ट नहीं है, हम खुद ही उलझन में, हम खुद ही उलझे हुए हैं। इसलिए देवभूति बनने की कोशिश करो, इसलिए देवभूति से ये चीज सीखो कि पहले क्लियर करो अपने आप को कि तुम्हें क्या चाहिए, संसार का वैभव, संसार का ऐश्वर्य यदि हाँ तो फिर अभी हम बहुत दूर हैं, फिर इन चीजों का कोई अर्थ नहीं, आध्यात्मिक योग का कोई अर्थ नहीं। हम जान सकते हैं, हम सीख सकते हैं, हम दूसरों को पढ़ा सकते हैं, लेकिन अपने लिए उस शांति का कोई अर्थ नहीं। और दूसरी बात, भगवान की याद करो, अत्यंतो परित्यज्यत्र दुःखस्य च सुखस्य च। इस आध्यात्मिक पथ पर आप ये और ये बात भगवान कह सके, ये बात भगवान देवभूति से कह सके, आपसे कोई नहीं कह सकेगा, कोई नहीं कह पाएगा। क्यों? क्योंकि आप स्पष्ट नहीं है, हम स्पष्ट नहीं है, और भगवान देवभूति से कह सके क्योंकि देवभूति बिल्कुल स्पष्ट है कि हमें उस परमानंद की अभिलाषा है। हम इस संसार से ऊब चुके हैं, हम इस संसार से छूटना चाहते हैं, ये बंधन हमें लग रहा है, इन आंखों की प्यास हम बुझा नहीं सके, ये हमारी बात समझ में आ गई इसलिए स्पष्ट है। तो भगवान ने भी कह दिया कि हम तुमको बताते हैं रास्ता, दिखाते हैं। अत्यंतो परित्यज्यत्र दुःखस्य च सुखस्य च। इस आध्यात्मिक पथ पर पैर रखने वाले को पहले से ये सोचना चाहिए, ये सूत्र सबसे पहले सिखाना चाहिए कि तुम हमारे यहां आना चाहते हो, हाँ, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि यहां दुख तो दूर हो जाएगा, पक्की बात है। हम विश्वास के साथ कह रहे हैं, भगवान कहते हैं ठप्पा लगा करके हम तुमको दे देते हैं, बोल देते हैं कि इस पथ पर अगर तुम चले तो दुख दूर हो जाएंगे तुम्हारे, संपूर्ण दुख दूर हो जाएंगे। लेकिन एक बात और ध्यान रखना, तो कहा क्या, कहा सुख भी दूर हो जाएंगे। ये बात है, और शायद मैंने आपको कहा हो कि एक महात्मा ने एक साधक से कहा कि परमात्मा मिलना बहुत सहज सरल, भगवान को पाना बहुत सरल है। तो कहने लगे नहीं आप मजाक कर रहे हैं, बोले बिल्कुल नहीं, तुम्हें विश्वास नहीं है, बोले नहीं, तो कहो मेरे साथ में मिलवाता हूं। आदमी को विश्वास नहीं हुआ कि भगवान से मिलवाते हैं ऐसे जैसे किसी मेहमान से मिलवा रहे हैं, बोले हाँ मेरे साथ आओ मिलवाते हैं तुमको। वो महात्मा उस व्यक्ति को पकड़ के ले गए मंदिर में, दरवाजा बंद था, तो कहा कि देखो ये दरवाजा है, इसकी जंजीर को पकड़ के खटखटाओ, क्या होगा? बोले बस दरवाजा खुलेगा, भगवान का दर्शन होगा। तो कहा भगवान का दर्शन इतना सहज? बोले बिल्कुल इतना ही सरल है, तुम्हें करना है बस इतना काम कि हाथ उठाओ, जंजीर पकड़ो, खटखटाओ, दरवाजा खुलेगा, भगवान का दर्शन होगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, महात्मा ने कहा, तो कहा क्या? बोले दरवाजा खुलेगा, भगवान का दर्शन होगा, ये इतना ही सरल है, लेकिन तुम्हारा घर छूट जाएगा, तुम्हारी पत्नी छूट जाएगी, तुम्हारे बच्चे छूट जाएंगे, तुम्हारा बनाया हुआ सारा संसार समाप्त हो जाएगा। परमात्मा पाना बिल्कुल सरल है, इतने ही झटके में तुम पा सकते हो, लेकिन जितना तुमने निर्माण किया है वो सब विदा हो जाएगा, वो नहीं बचेगा। तो उसने कहा मुझे नहीं चाहिए, संसार नहीं चाहिए मुझे, मैं परमात्मा को देखना चाहता हूं। बोले तो देखो, खटखटाओ। उसने हाथ उठाया, जंजीर पकड़ना चाहा, तो दिमाग में एक बात आई कि जब इतना ही सरल है तो इतनी जल्दी क्या है। भगवान को पाना इतना ही सरल है, तो कभी भी आके खटखटा लेंगे, कभी भी आ जाएंगे। बाद में अभी इतनी जल्दी क्यों छोड़े उन बच्चों को, क्यों छोड़े उस घर को जो बड़ी मेहनत से तैयार किया, क्यों छोड़े उस पत्नी को जिसको जिसके साथ में जीने मरने की कस्में खाई, तब उसको धर्म याद आता है। मजे की बात देखी, ऐसे समय पर उसे कस्में याद आती हैं, दुनिया के समय लड़ते समय कस्में याद नहीं आती, कभी आती है? ईमानदारी से बोलना, जब झगड़ा करते हो आपस में तब कस्में याद नहीं आती कि जीने मरने की कस्में खाई थी, लेकिन भगवान की जब हम बात करेंगे तब जरूर कहोगे कि महाराज जीने मरने की कस्में खाई थी, साथ साथ में जिएंगे, साथ साथ में, उसको कैसे छोड़ सकते हैं। एक सज्जन है हमारे साथ में मानसरोवर यात्रा पर गए, और हमसे कहने लगे कि हम बस चौथी अवस्था है, अब संन्यास लेना चाहते हैं, सन्यासी बनना चाहते हैं। तो हमने कहा बन जाओ, बड़ा सरल काम है, सन्यासी होना कठिन थोड़ी, छोड़ना ही तो है सब। तो कहा नहीं हो तो जाएगा, लेकिन एक समस्या है। मैंने कहा क्या? बोले मेरी पत्नी भी साथ में। तो हमने कहा कि उनको भी ले आओ। बोले नहीं, यही तो समस्या, वो आना नहीं चाहती। हमने कहा ये बात समझ में नहीं आई, जब वो नहीं आना चाहती तो तुम उनके झंझट में पड़े क्यों, छोड़ दो। बोले नहीं, कसमें खाई है साथ मरने की साथ जीने की। तो उस आदमी ने कहा, मन में सोचा कि इतनी जल्दी कहाँ है, बस अभी मिल लेते हैं उनसे, अभी संसार में थोड़ा टिक लेते हैं, दोबारा आएंगे। और वो गया वापस, चला गया, दोबारा नहीं आ सका। वो हम ही है और कोई नहीं है, हम में से ही सब है, ये हम ही है कि जो उस महात्मा से वादा करके गए कि अभी आते हैं लौट के, लेकिन आज तक नहीं आए, वो समय अभी तक नहीं आता। परमात्मा पाना सहज है। तो मैं आपसे कह रहा था कि जब हम ये आकर्षण दें आपको, माइक में बोलें कि अगर तुम यहां कदम रखो सारी दुख छूट जाएंगे, सारे दुख दूर हो जाएंगे, तो हजार आदमियों के कान में बात पड़े तो हजारों आएंगे यहां। लेकिन मैं कहता हूं कि जो लोग दुख दूर करने के लिए यहां आते हैं उन्होंने आधी बात सुनी है। निवेदन हाथ जोड़ के करता हूं, मुझे क्षमा करना, कि जो आध्यात्मिक इस बात को सोच करके बनते हैं कि संसार के दुख दूर हो जाएंगे उन्होंने आधी बात सुनी है, पूरी नहीं सुनी। यहां दुख नहीं, यहां सुख भी दूर होते हैं, ये ध्यान रखना। यहां सुख भी चले जाएंगे, यहां जो तुम बड़ी बड़ी हवेली बनाने की जो कल्पना किया करते हो, बड़े बड़े साम्राज्य को खड़ा करने की कल्पना किया करते हो और सपनों में ख्वाबों में जिया करते हो, यहां वो कुछ नहीं होगा, समाप्त हो जाएगा। अगर ये मंजूर है हृदय में तो आओ कदम रखो। अत्यंतो परतिर्यत्र दुखस्य च सुखस्य च, अत्यंतो अत्यंत अत्यंत समाप्ति हो जाती है। यहां दुख जाता है तो फिर लौट के नहीं आता, ध्यान रखना। आपने थोड़ी सी गोली लिया पेट दर्द की और पेट दर्द बंद हो गया, इसका मतलब ये गारंटी नहीं है कि दूसरे दिन नहीं होगा पेट दर्द, ये गारंटी नहीं है कि जब तक तुम जीवित रहोगे तब तक तुमको दर्द की संभावना नहीं है। डॉक्टर कह सकता है कि संभावना है? संसार का कोई भी डॉक्टर ऐसा पैदा नहीं हुआ जो तुमको ये कहे कि ये दवाई ले जाओ आज के बाद में तुम्हें कोई बीमारी नहीं होने वाली, नहीं कह सकता। लेकिन भगवान कह रहे, भगवान कहते हैं हम गारंटी देते हैं तुम्हें कि इस पथ पर कदम रखोगे जो हम कह रहे हैं, जहां तुम अगर आते हो तो संसार में एक भी दुख में ऐसी ताकत नहीं है कि तुमको दुखी कर सके, गारंटी। एक बार गया तो खत्म। अत्यंतो परतिर्यत्र, अत्यंत समाप्ति हो जाती है, आत्यांतिकी निवृत्ति हो जाती है, दुख फिर लौट कर नहीं आता। लेकिन दुख नहीं, सुख भी चला जाएगा। संसार का दुख और सुख, इस सिक्के के दो पहलू हैं। हमारे एक महात्मा कहते थे कि दुख आए तो संसार के लोग परेशान होते हैं, महात्मा सुखी होता है कि सुख आएगा, पीछे सुख आने वाला है, रात आई तो दिन आएगा जरूर, दुख आएगा तो सुख भी जरूर आएगा, सुख आएगा तो दुख भी जरूर आएगा। ये दोनों एक दूसरे के पहलू है, ये दोनों एक ही साथ आते हैं, और जितना बड़ा सुख आएगा उतना बड़ा दुख आएगा, यह भी सच, ये भी उतनी बड़ी ही सच्चाई है। संसार में आप देखते जाना कि दुख और सुख दोनों एक साथ रहते हैं, अलग अलग नहीं रहते। इसलिए भगवान कहते हैं सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभ हो जया जी, वहां खाली दुख की बात नहीं है, सुख की भी बात है। और इसलिए लोग दुख में तो परमात्मा को याद करते हैं, सुख में भूल जाते हैं, और सुख में भूल जाते हैं इसलिए ज्यादा परेशान होते हैं। और मुझे लगता है कि दुख में तो तुम अपने आप ही याद करोगे, दुख में हम लोगों को कहने की जरूरत नहीं है। जब तुम्हें दुख आएगा तो तुम हमसे पूछ करके, आज तक हमको कोई आदमी नहीं मिला जो हमसे ये कहे कि महाराज बताओ जरा किताब में कि कैसे भगवान का स्मरण करते हैं जब उसके जीवन में दुख हो, तो उठते बैठते चलते फिरते, भगवान कहते हैं ना पश्चन शनवन स्पृशन जिग्रहण, तब ये गीता की बात उसने गीता में पढ़ा नहीं है। अपने आप जब संकट बहुत बड़ा होता है, हे प्रभु अब तो तुम ही रक्षा करोगे, हे प्रभु तुम ही बताओगे, ये कब तुम ही बचाओगे, ये बात कब कहता है? सवेरे नहा धोके नहीं कहता वो, जब उसे मौका मिलता है, जहां समय जहां याद आए हे प्रभु अब आप ही रक्षक है, दुख के समय। और सुख के समय तुम पूछने जाते हो, महाराज बताओ तो सर ये इस किताब में समझाओ कि ध्यान कैसे लगता है, तब तुम किताबें ढूंढते हो कि ध्यान की प्रक्रिया क्या है वो बताइए आप हमको, और दुख के समय कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं। तो मुझे लगता है कि दुख में भगवान का स्मरण कैसे करें हमें बताने की जरूरत नहीं, वो तो आप अपने आप ढूंढ लेते हो, आपको अपने आप पता चल जाता है। लेकिन सुख में करने की जरूरत है, सुख में परमात्मा का स्मरण। मैं तो हमेशा बोलता हूं कि जब तुम जन्मदिन मनाते हो, ईमानदारी से ध्यान रखना, जन्मदिन मनाते हो उस समय पर जब पार्टी चल रही होती है, सब लोग बधाइयां देने आए होते हैं, तब तुम्हें एक बार भी परमात्मा का ख्याल नहीं आता। जिस समय शादियां हो रही हैं, शादी में बैंड बाजे बज रहे हैं, नाच रहे हो तुम, उस नाच में तुमको भगवान कभी याद नहीं आया। लेकिन दुख में तुम्हें परमात्मा हमेशा याद रहता है, हमेशा याद रहता है। तो मुझे लगता है कि सुख में और दुख में जो समान हो गया, जो ऊपर उठ गया, तो कहा वो आध्यात्मिक। लोग हमसे पूछते हैं कि महाराज कैसे पता चले कि हम आध्यात्मिक हैं, कैसे पता चले कि हमारी कौन सी कक्षा है, कैसे पता चले कि हम हमारी कौन सी श्रेणी है, हम कहां पहुंच गए? तो मैं कहता हूं यही पता चलेगा जिस समय संसार के सुख और दुख दोनों से आप ऊपर हो जाते हो, दोनों को आप देखने लगते हो, दोनों आपको बराबर नजर आने लगते हैं, संसार के सुख और दुख दोनों बराबर नजर आने लगते हैं, उस समय पर आप पूर्ण आध्यात्मिक हो चुके होते हैं। आपको फिर आध्यात्मिक होने की जरूरत नहीं, हो चुके, सिद्ध हो गए आप, आध्यात्मिकता की दृष्टि से आप बहुत अच्छी स्थिति में पहुंच गए। जब सुख और दुख ये भ्रम मत समझ लेना, वास्तविकता समझना, जिस समय सुख और दुख दोनों समान हो जाए, दोनों का लेवल बराबर हो, कोई मायने नहीं रखता। और संसार का सुख क्या है? संसार का दुख ही है। भगवान शंकराचार्य जी महाराज ने कहीं संकेत किया है कि बंधन चाहे वो लोहे का हो और चाहे वो सोने की जंजीर का हो, बांधने वाले तो दोनों ही काम करे, बंधन तो बंधन ही है। तो जहां चाहे वो पाप हो, पाप भी बांधता है, नरक में भेजेगा, और पुण्य भी बांधता है, स्वर्ग में भेजेगा। तो स्वर्ग का सुख मालूम पड़ता है, लेकिन बंधन तो वहां भी है। तो पाप और पुण्य दोनों ही बंधन है। श्रीमद् भगवद गीता में एक श्लोक है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शोचः। तो सर्व पापेभ्यो का मतलब पाप से तुमको बचा लेंगे ऐसा नहीं, वहां पाप और पुण्य दोनों ही समझना चाहिए, क्योंकि दोनों ही बांधने वाली चीज है, दोनों से ही भगवान बचा लेंगे तुमको। ये संकेत वहां पर किया है भगवान शंकराचार्य जी महाराज ने। ऐसी मुझे लगता है कि संसार का दुख इतना खतरनाक नहीं है, क्योंकि दुख में तुम ज्ञानी बन जाते हो, दुख में तुम्हें विवेक साथ देने लगता है, बिना महात्मा के ही तुमको ज्ञान याद आने लगता है, परमात्मा का बोध होने लगता है, भगवान तुम्हें मालूम पड़ने लगते हैं। दुख में दुख उतना खतरनाक नहीं, सुख ज्यादा खतरनाक है साधक के लिए, सुख संसार का ज्यादा खतरनाक है। इसलिए जब सुख आए तब तुम अगर अपनी सावधानी बरत ले जाते हो, सावधान हो जाते हो, तो आप सबसे बड़े साधक हो। और जिस समय दोनों अवस्थाएं आप पार कर गए, आप सिद्ध हो गए। योग अध्यात्म का पुंसाम मतो निःशेषाय में उस मुक्ति, और देखो निःशेषाय में कौन सी मुक्ति की बात कर रहे हैं? कई मुक्तियां आपने सुनी होंगी, सारूप्य सायुज सामीप्य सालोक, ये जो चार मुक्तियां हैं ये तो मरने के बाद तुम्हें मिलेंगी। सारूप्य तुम तभी होगे, भगवान के रूप जैसे तभी होगे जब आप मर करके जाओगे, शरीर को छोड़ दोगे तब। सालोक भगवान के लोक में तभी रहोगे जब ये शरीर छूट जाएगा। सामीप्य परमात्मा के समीप तभी रहोगे जब ये शरीर छूट जाएगा। और सायुज्य भगवान के समान भोग तभी भोगोगे जब तुम शरीर छोड़ के जाओगे। तो भगवान कहते हैं हम उसकी बात नहीं कर रहे, हम उसकी बात कर रहे हैं यहां जीते जी, जीवन मुक्ति का जो विलक्षण आनंद है। हमारे पूज्य चरण श्री गुरुदेव भगवान वो कहा करते हैं, वेदांत उधार का सौदा नहीं करता, वेदांत नगद का, इस हाथ से दे उस हाथ से ले, यहीं पर जीते जी। मरने के बाद पता नहीं क्या होगा, किसे खबर है, किसे पता है। यहां जीते जी उस ब्रह्मानंद की अनुभूति अगर करना चाहते हो, यहां जीते जी अगर उस तत्व की प्राप्ति अनुभूति करना चाहते हो, तो कहते हैं आध्यात्मिक योग। हम यहां की बात कर रहे हैं, यहीं बैठे बैठे इसी समय तुमको उस ब्रह्मानंद की अनुभूति हो सकती है आध्यात्मिक योग के द्वारा, उस चिंतन के द्वारा। ये आध्यात्मिक योग है क्या? मालूम तो पड़े, बोले ब्रह्म विद्या। तो कहा ब्रह्म विद्या में ऐसी कौन सी चीज है, ऐसा क्या कमाल है कि यहां बैठे ही बैठे तुम्हें उस ब्रह्मानंद की अनुभूति हो सकती है? तो कहा ब्रह्म विद्या का यही कमाल है कि जो वास्तविक है वो तुम्हें पता चल जाता है, जो हकीकत है, जो सत्य है, उसका तुम्हें बोध हो जाता है। बस बात खत्म। ब्रह्म विद्या करती कुछ नहीं है, ये प्रकाश क्या कर रहा है? प्रकाश कुछ नहीं कर रहा है, दिखा दे रहा है कि ये पुस्तक है और ये माइक है, ये अमुक है, ये अमुक है, ये अमुक है, ये दिखा दे रहा है। बस प्रकाश कुछ कर रहा है, ब्रह्म विद्या प्रकाशित कर देती है, दिखा देती है कि बस ये संसार है और ये आनंद है, ये दुख है, ये सुख है। ये वो अवस्था है कि जहां आदमी जाने के बाद और उसको पुनः जन्म नहीं होता। श्रुति कहती है ना, श्रुति भगवती न से पुनरावर्तते न से पुनरावर्तते, वो दोबारा नहीं आता। ये तुम्हें पता चलता है, स्पष्ट हो जाता है। ब्रह्म विद्या वो ज्ञान है कि जहां तुम्हारे सारे भेद समाप्त हो जाते हैं, जहां तुम्हारे सारे मोह दूर हो जाते हैं। तुम्हें मोह दूर करने के लिए फिर कुछ करना नहीं है। देवभूति कहती है कि हम अंधे हैं, दिखाई नहीं पड़ता। भगवान कहते हैं ये ब्रह्म विद्या वो प्रकाश है जिसमें तुम्हें सब कुछ नजर आने लगता है। क्या बात है! देखो अज्ञान के कारण ही श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म में एक बड़ा प्यारा श्लोक है, बहुत अच्छा है। भाग्योदय न बहुजन्म समर्जिते न सतसंगम चलभते पुरुषो यदा वही अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशम विधाय तथो दयते विवेक। देवर्षि नारद जी ने सनकादिकों की प्रशंसा किया है, वहां स्तुति किया है, और स्तुति करते हुए कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा भाग्य कब मानते हो आप? आदमी भाग्यशाली है ये कब मानते हो? तो नारद जी कहते हैं कि भाग्यशाली नहीं, मैं थोड़ा एक चीज और जोड़ता हूं इसमें। तो कहा क्या? कहा कि मनुष्य शरीर, ये जो अभी शरीर आपको मिला है, इससे पहले जितने बार भी आपको शरीर मिला था, पहले भी मनुष्य शरीर मिला होगा, और उस मनुष्य शरीर में आपने उन मनुष्य शरीरों में एक शरीर में नहीं, उस मनुष्य शरीरों में आपने अनेकों पुण्य किए होंगे, अनेकों, उनका कोई हिसाब नहीं। बोले हाँ। बोले सारे पुण्यों का जब एक साथ में फल देना होता है परमात्मा को, तो क्या दे देते हैं भगवान? कितनी बड़ी बात है। उन सारे पुण्यों का फल जब परमात्मा को देना होता है, तब क्या देते हैं? बोले तब सत्संग दे देते हैं। सत्संगमं चलवते पुरुषो यदावै, जिसमें आप संतों का साथ प्राप्त करते हो, उसमें समझो अनंत जन्मों के पुण्यों का फल एक साथ में प्रकट हुआ है, अवतरित हुआ है। कितनी बड़ी बात, इस बात को समझना। अब यहां आने के बाद में भी अगर तुम रहो कि हमारी किस्मत खराब है, तो मुझे लगता है वाकई खराब है। यहां आने के बाद में भी कहो कि हमारा भाग्य अच्छा नहीं है, तो फिर वाकई रोना आएगा। कितनी बड़ी किस्मत है आपकी, जरा सोचो। आपकी किस्मत का मुकाबला तो टाटा बिरला भी नहीं कर सकेंगे। बुरा मत मानना, सच्चाई है ये। दुनिया का कोई व्यक्ति इस भाग्य का मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ जो आप पा रहे हैं बड़ी किस्मत वालों को मिलता है। ये बात दूसरी है कि हमने उसका उपयोग कितना किया, महत्वपूर्ण ये नहीं है। हमें कितना मिला, हमने उसको कितना पाया, हमने कितना पी सके, पचा सके, वो बात दूसरी है। लेकिन यहां जो आप पा रहे हो, बड़ी किस्मत वालों को नसीब होता है, बहुत किस्मत वालों को। आपका प्रारब्ध था कि आपको लेकर के आ गया, तो नारद जी से पूछा कि आप कह रहे हो कि अनंत जन्मों के पुण्य के प्रभाव से व्यक्ति सत्संग को प्राप्त होता है, इस सत्संग में खूबी क्या है, इन महात्माओं ने आपको दिया क्या जो आप इतनी बड़ी बात कर रहे हो? तो वहां बहुत प्यारी बात कही, अज्ञान हेतु कृत मोह मद अंधकार। आदमी दुखी होता है, आदमी रोता है, आदमी परेशान होता है, क्यों? उसकी खोज किया कभी? तो कहा कि नहीं, समझ में नहीं पाए। दुख तो होता है, दुखी तो होते हैं, लेकिन क्यों होते हैं नहीं मालूम। तो कहा हम बता देते हैं, अज्ञान है, तो अज्ञान के कारण। नहीं पता था कि ये पुत्र क्या होता है, नहीं पता था कि ये संसार क्या होता है, ये मेरा पुत्र है, मैं रोने लगा, ये मेरा है मानने लगे हम, सारी दुनियादारी ऐसे ही संबंध जोड़ते चले गए और भटकने लगे। तो जितना भी मोह माया जो कुछ भी अंदर में पैदा हुआ, सब अज्ञान के कारण हुआ। तो नारद जी ने कहा कि अज्ञान दूर कैसे होता है? स्वाभाविक है, अंधेरा अगर दूर करना है तो प्रकाश लेकर के आओ, अज्ञान दूर करना है तो ज्ञान लेकर के आओ। विवेक के द्वारा, विवेक रूपी सूर्य जिसके हृदय में उदित हो गया, तो अंधेरा मिट जाता है। तो कहा अंधेरा मिटेगा तो क्या होगा? बोले अज्ञान मिट गया तो सब कुछ मोह माया, क्योंकि अज्ञान के कारण ही थे वे सब। तो जैसे ही ज्ञान पैदा हुआ, ज्ञान रूपी सूर्य प्रकट हुआ, तो सब कुछ समाप्त हो गया, मोह भी मिट गया, माया भी मिट गए, दुख भी मिट गए। बोले ये विवेक आता कहां से? तो कहा संतों के द्वारा। ये विवेक दुनिया की किसी मार्केट में नहीं मिलता, बाजार में नहीं मिलता, पैसा दो और आप खरीद लो। ये संतों की कृपा से, इसलिए संतों की इतनी बड़ी महिमा कही गई। अब उन संतों को पाने के बाद भी अगर हम उस ज्ञान रूपी विवेक रूपी सूर्य को उदय नहीं कर पाए, तो ये दुर्भाग्य हमारा है। जिसमें हमने यहाँ भागवत किया, उसके बाद में जब जिस दिन भंडारा था, संत सम्मेलन हुआ, तो वहां भागवतानंद जी महाराज ने एक बड़ी प्यारी बात कही, बहुत अच्छी बात कही, कि ज्ञान सूर्य उदय हुआ, प्रकाश हो गया, लेकिन हम ही अपनी आंखें न खोलें तो प्रकाश तो हो गया, उजाला आ गया, और लेकिन अपनी आंखें हम बंद करके रखें तो सूर्य का क्या दोष है? सूर्य क्या कर सकता है? सूर्य तो रोज उदित होता है, लेकिन उल्लुओं को दिखाई नहीं पड़ता, तो सूर्य का दोष थोड़ी है। अब सूर्य भगवान क्या करें? ऐसे ही संत मिल गए, लेकिन फिर भी हमारे हृदय में अगर ज्ञान का, और हमारे हृदय में ज्ञान का सूर्य भी उदित हो गया, लेकिन फिर भी हम आंख अपनी बंद की, विवेक रूपी आंख अपनी बंद किए हुए हैं, तब उस सूर्य का, उस ज्ञान का क्या दोष है जो हम रोज श्रवण करते हैं? ये वही ज्ञान सूर्य उदित होता है सवेरे सवेरे। आप सुबह आते हो ना, ये बड़ा अच्छा लगा, यहाँ सुबह सत्संग होता है, कई जगह शाम को होता है, यहाँ सुबह होता है, यानी सुबह सुबह सूर्य उदय होता है हमारे यहाँ भी, लेकिन हम ही अपनी आंखें न खोलें तो उसमें सूर्य का क्या दोष है? भगवान कहते हैं योग अध्यात्म का पुंसाम मतो निश्चय साहेब में, भगवान कहते हैं मेरा ये मत है, मेरा ये निश्चय है कि ये ब्रह्म विद्या, ये ब्रह्म ज्ञान जिसके हृदय में आया, सब कुछ समाप्त हो गया, सारी दुनियादारी, सारे भेद, सारी बुद्धियां, सब कुछ खत्म हो गई, सब कुछ। भगवान शंकराचार्य जी महाराज ने एक श्लोक लिखा है, बहुत अच्छा, और मैं बहुत छोटा था अपने आश्रम में जब था, तो वहां हमारे आश्रम में क्या है, अच्छे अच्छे श्लोक दीवार पर लिख करके रखे हैं महाराज जी ने। तो एक श्लोक लिखा था, तत्पाद पंकज समाशरणं विनामे सन्नप्य सन्निव पर पुरुष पर आसीत, तत्पाद पद्म युगला शरणाद इदानीम नासीन न चास्ति न भविष्यति भेद बुद्धि। आप लोग तो वेदांती हैं इसलिए अच्छी तरह से समझ में आएगा। भगवान शंकराचार्य जी गुरुदेव की स्तुति करते हैं गुरु महाराज को प्रणाम करते हुए कि महाराज आपके चरण कमलों का जब तक आश्रय हमने नहीं लिया था, जब तक आपके शरणापन्न हम नहीं हुए थे, तब तक भेद था। मैं और समझता था ईश्वर और है, तब मुझे लगता था कि जो सत्य है वो असत्य के समान प्रतीत होता था। तत्पाद पंकज समा शयनंग बिना में सन्नप्य सन्निव पर, जो सत्य था वो असत की भांति मालूम पड़ता था और जो असत था वो सत्य की भांति मालूम उल्टा मालूम पड़ता था। तो कहा अच्छा फिर, तो कहा तत्पाद पद्म युगला शयनादिदानी, और जब आज मैंने आपके चरण कमलों का आश्रय लिया और तब मुझे क्या लगा, तब मुझे वास्तविकता का पता चला कि ये जो भेद बुद्धि है, भेद बुद्धि कि मैं अलग हूं, ईश्वर अलग अलग है, ब्रह्म अलग है, पदार्थ अलग है, संसार है, ये आदि आदि, ये जो भेद बुद्धि है आपके चरण कमलों का आश्रय लेने के बाद पता चला कि न तो ये भेद बुद्धि है, न रहेगी और न थी, नासी न चाहती न भविष्य भेद बुद्धि। बात समझना, न तो ये भेद बुद्धि थी, न है, न रहेगी। तो मैंने जब पढ़ा तो मुझे बड़ा अटपटा लगा। आपको नहीं लगा अटपटा कि भेद बुद्धि नहीं थी ये कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि जब आपके, समझ में आ रहा है कि नहीं, आपके चरण कमलों का आश्रय जब हमने लिया तब मुझे पता चला कि जो भेद बुद्धि हम बता रहे थे ना, वो भेद बुद्धि न तो थी, न है, न रहेगी। तो मेरी समझ में नहीं आया। मैंने महाराज जी पूछा कि महाराज जी एक बात बताइए, ये खुद ही कह रहे हैं कि जब तक आपके चरण कमलों में नहीं आया था तब तक ईश्वर अलग लगता था, हमें अलग लगता था, सत्य असत की भांति प्रतीत होता था, असत्य सत्य के, खुद ही बोल रहे हैं, और अब बोल रहे हैं कि नहीं, आपके चरण कमलों का आश्रय लेने के बाद पता चला कि ये जो भेद बुद्धि मालूम पड़ रही थी ये न तो थी, न है, न रहेगी। तो न है वो भी समझ में आता है, नहीं रहेगी ये भी समझ में आता है, लेकिन थी नहीं ये समझ में नहीं आता। थी तो खुद ही कह रहे। महाराज जी ने कहा यह बात तो बहुत बढ़िया, बड़ी प्रशंसा किया, क्या बात है, अच्छा सवाल है। और बाद में उन्होंने जब समाधान किया तो बड़ा सहज बोले, वास्तव में कहां थी, नहीं समझे, वास्तव में थी कहां? जैसे रस्सी में सर्प है, देखा हमने, भ्रांति हुई रस्सी में, जब तक आपने प्रकाश नहीं किया तब तक उसमें सर्प दिखा, ये बात बिल्कुल सच है, जब तक आपने प्रकाश नहीं किया तब तक रस्सी में सर्प दिखा, लेकिन जब मैंने प्रकाश किया, और तब मैं अगर मैं आपसे कहूं कि जब मैंने प्रकाश किया तब वहां न तो सर्प था, न है और न रहेगा, बात आई समझे, न तो सर्प, अच्छा सर्प था वहां, नहीं था, वो जो दिख रहा था वो भी भ्रांति थी, हा? वो दिखना भी तो भ्रम था। तो भेद बुद्धि जो थी नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भेद बुद्धि थी तो, लेकिन वो भेद बुद्धि का होना भी भ्रम था, वास्तविक कहां थी, अगर वास्तविक होती तो मिटती कैसे, ज्ञान से मिट गई। तो ये जैसे ही आप उस ब्रह्म विद्या को प्राप्त होते हैं, भगवान कपिल कहते हैं, माताजी आप कहती हो ना कि अंधेरे के कारण हम अपनी इंद्रियों के पीछे भागे, अंधेरे के कारण हम अपने मन को संतुष्ट करने के लिए भागे, तो हम कहते हैं कि ये प्रकाश, ये टॉर्च लेकर के जाओ, ये ज्ञान का उजाला लेकर के जाओ, जहां तुमने इसको पैदा किया सारा अंधकार समाप्त हो जाएगा, सारा अंधकार मिट जाएगा। दूसरी बात, अब ये सिद्धांत का वर्णन कर दिया, सब कुछ वेदांत का निचोड़ सार जिसे कहते हैं ना, वो कह दिया। कहीं किसी शास्त्रकार ने लिखा है कि वेदांत का सार क्या है, मात्र एक, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्म ही बना पर, ब्रह्म सत्य है, संसार मिथ्या है, और जीव और ब्रह्म दो नहीं एक ही है। जैसे वो सार है ऐसे यहां सार रख दिया, सारा का सार, योग आध्यात्म का पुंसा मतो निशेषाय में, मेरी मान्यता है कि आध्यात्मिक योग ही उस परम कल्याण को करने वाला है, और जैसे ही आप उसको प्राप्त होते हो अत्यंत्यो परतिर्यत्र दुखस्य च सुखस्य च, आप उस अवस्था को प्राप्त होते ही संसार के सुख दुख से ऊपर उठ जाते हो, यह सैद्धांतिक वर्णन कर दिया। लेकिन जरूरी नहीं है कि यह सिद्धांत सबकी समझ में आ जाए, देवहूति को कहा लेकिन समझ में आए सबको, ये जरूरी नहीं है। तो भगवान अपनी बात को और स्पष्ट करते हैं कि ये बात समझ में कैसे आए, ये बात मालूम कैसे पड़े, ये ब्रह्म विद्या हमारे हृदय में उतरे कैसे, उसका उपाय क्या है। तो उपाय बताते हैं आगे, अब साधनों का वर्णन है, धीरे धीरे सिद्धांत बता दिया, अब उसे पाया कैसे जाए ये कहते हैं, लक्ष्य निर्धारित कर दिया अब चला कैसे जाए ये बताते हैं, तरीका क्या है चलने का, पहुंचने का तरीका क्या है। हमारे जीवन में हम लोगों ने लक्ष्य निर्धारित नहीं किए होते हैं, लेकिन यहां पर इन्होंने लक्ष्य निर्धारित कर दिया कि आध्यात्मिक योग लक्ष्य है, उसको कैसे पाया जाए अब तरीका बताते हैं। तो क्या तरीका है, चेता खलुवस्य बंधाय मुक्तये चात्मनो मतम गुणेशु सक्तम बंधाय रतम वा पुंसि मुक्तये। तो कहा जिस मन को ये गालियां दे चुकी हैं माता जी, उसी मन के बारे में कहते हैं कि ये मन बुरा है ऐसा मत सोचना, ये मन खराब है ऐसा मत सोचना, ये मन अच्छा भी है और ध्यान रखना, ये मन चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो काम इसी से लेना पड़ेगा। हा? यही एक वो माध्यम है, यही वो तरीका है, यही वो सहारा है कि जो आपका काम बना सकता है, और अगर आपने इसका ख्याल नहीं रखा तो ये आपका काम बिगाड़ भी सकता है, आपको समाप्त भी कर सकता है। चेता खलवस्य बंधाय मुक्तये चात्मनोमतम गुणेशु सक्तम बंधाय रतम वापुंसि मुक्तये। ये सिद्धांत नहीं है, साधन है, इतना ध्यान रखना, ये साधन है। चेता खलवस्य, चेता खलवस्य बंधाय, ये मन ही, मन एव मनुष्याणाम कारण बंध मोक्षयो, इसका अनुवाद है, ये मन ही बंधन का कारण है, ये मन ही मुक्ति का कारण है। एक ही चीज से आप बंधते हैं, एक ही चीज से आप मुक्त भी होते हैं। स्पष्ट करें, बहुत स्पष्ट है, आप लोगों ने कई बार सुना होगा, गुणेशु सक्तम बंधाय, जिस समय पर ये मन संसार के पदार्थों में अनुरक्त होने लगता है, जिस समय ये मन संसार के पदार्थों का चिंतन करने लगता है, आप समझो कि ये बंधन में पड़ गया, बंधन में डालने वाला हो गया। और जब ये मन जिस समय पर परमात्मा का चिंतन करने लगता है, आप समझो उसी समय इसने मुक्त कर दिया, मुक्ति के रास्ते पर लेकर के चलने लगा। अब ध्यान दो, गुणेशु सक्तम बंधाय, जब जब, और ये बात, ये स्थिति आपके जीवन में कई बार आएगी, आप अनुभव भी करो, आप भगवान का चिंतन करो। हमने एक संत को पढ़ा कि परमात्मा का चिंतन करो, पढ़ने वाली बात दूसरी, आप अनुभव करके देखो, भगवान का चिंतन करो, आप हल्के हो जाते हो, निश्चिंत हो जाते हो, बिल्कुल निश्चिंत हो जाते हो, भार नहीं लगता, मन के ऊपर कोई भार नहीं लगता। और जरा संसार का चिंतन करो, बैठो कभी, करते ही हो, करो, उसको बैठने की जरूरत नहीं, संसार का चिंतन करने के लिए ध्यान करने की जरूरत थोड़ी, हा? वो तो सहज होता है, हा? होता ही है, हा? तब देखो जब होता है, ओहो क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा, हा? तब सिर भारी है, तब आपको डिप्रेशन की स्थिति होती है, तब आपको दवाइयों की जरूरत पड़ती है। अच्छा, किसी, कभी आपने गौर किया है कि आप भजन कर रहे थे, मस्ती में डूबे हुए थे, तब आपको दवाई की जरूरत पड़ी हो, हा? कि दवाई ले लें, जरा टेंशन हो रही है, हा? भजन करने से टेंशन हो रही है, भजन करने से विक्षेप हो रहा है, आज परमात्मा का बहुत ज्यादा भजन कर लिया, 10 माला जप कर लिया कि 15 माला जप कर लिया, इसलिए थोड़ा सा सिर दर्द हो रहा है, अगर होता है तो फिर इलाज करवाओ, महात्मा से इलाज करवाओ, वो भजन ठीक नहीं हो रहा है। परमात्मा के भजन से आप हल्के हो जाते हैं, वही देखिए, थोड़ा विचार कीजिए, इन शब्दों को प्रैक्टिकली कीजिए, व्यवहारिक बनाइए, इन शब्दों को, भगवान की बातों को व्यवहारिक बनाइए। आप, मैं मानता हूं कि जो आप उपदेश श्रवण करते हो उनको जीवन में देखिए, यहाँ 1 घंटा आप सुनते नहीं हो, ऐसा मत सोचना कि आप सुन रहे हो, क्योंकि आप जो सुन रहे हो वो आप सालों से सुन रहे हो, इसलिए मैं कहता हूं, अब आप ये सोच करके मत आना कि हम सुनने जा रहे हैं, अब आप ये सोच करके आना कि जो हम सुनेंगे वो हम देखेंगे हमारे जीवन में। हमारे महाराज श्री, हमारे गुरुदेव भगवान जब हमको पढ़ाते थे तो कहते, जो हम पढ़ा रहे हैं उसको सिर्फ पढ़ना मत, उसको देखो। तो हमने कहा ठीक है, देख लेंगे, जैसे अभी आप सोच रहे हो कि हाँ ठीक है देख लेंगे, आप कहो तो सही, जब होगा तब। तो अगली बार जब हम गए तो उन्होंने कहा देखा, मैंने कहा क्या देखो, देखना क्या, देखना क्या, तो उन्होंने कहा देखना यह है। अब उन्होंने हमको बताया, मैं बता देता हूं, उन्होंने हमको सिखाया कि सारा संसार पंच बूंदों से बना हुआ है, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, ऐसा। तो मैंने कहा ठीक है, समझ में आ गई बात, बोले नहीं समझ में आई, अब आप बताओ इसमें 5 भूत कहां है। मैंने कहा ये तो पता नहीं चलेगा, बोले यही है, व्यवहारिक बनाना, आप दिमाग से शुरू हो जाओ, जो आपने सुना है उसको देखना शुरू करो। हमने कहा अस्थिभाति रूप से, अस्थिभाति प्रिय रूप से वो परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है, और आपने मान लिया, अगर आपने मान लिया तो भटक गए, लेकिन अगर आप जानने की कोशिश वहीं से शुरू कर दो कि कैसे, हा? वो परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है कैसे, अगर ये शब्द आपके अंदर में प्रकट होता है तो आप समझो कि बिल्कुल साधक बनने की ओर अग्रसर है। कैसे, हा? हमारे अंदर में ये पैदा नहीं होता, हमसे कहा गया कि परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है, हमने मान लिया, हमसे पूछा गया भगवान कहां है, बोले सब जगह, लेकिन कैसे पता नहीं, क्योंकि हमने जानने की कोशिश नहीं की, हमने उस ज्ञान को व्यवहारिक नहीं बनाया, हमने उस ज्ञान को जिया नहीं, सुना और निश्चय कर लिया, याद कर लिया कि भगवान कहाँ है, सब जगह है, संसार कैसे बना है, माया है, संसार क्या है, पंचभूतों की रचना है, आदि आदि रट लिया, लेकिन व्यवहारिक नहीं बनाया। मैं आपसे कहता हूं कि इसको आप व्यवहारिक बनाओ। गुणेशु रक्तम बंधाय रतम बाप उनसे मुक्त है। जिस समय आप ध्यान करते हो, आप ये सूत्र को लेकर बैठो कि हम ध्यान करते हैं मुक्त है। क्या हम मुक्त हो जाते हैं? बिल्कुल हो जाते हो। आप भगवान का चिंतन करते हो, सहज हो जाते हो, छूट जाते हो, हल्के हो जाते हो, सारा दबाव समाप्त हो जाता है। लेकिन जब आप संसार का चिंतन करने लगते हो तो दिमाग जड़ हो जाता है, भारी हो जाता है, टेंशन लगने लगती है। आप दुकान को याद करो, आप पैसे को याद करो, आप समस्याओं को याद करो, आप उलझ जाओगे। यही बंधन है, और क्या बंधन? बंधन और कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई आकर के आपको रस्सियों से जकड़ेगा, ऐसा नहीं है कि आपके हाथों में पैरों में कोई बेड़ियां डालेगा, ऐसा नहीं। बंधन का मतलब है कि जहां आप दुख अनुभव करने लगो, जहां परेशानियां अनुभव करने लगो। और हम संसार में जब इस ज्ञान को व्यवहारिक नहीं बनाते हैं, तभी हमारे साथ में एक समस्या खड़ी होती। क्या समस्या खड़ी होती? समस्या ये खड़ी होती है कि हम दुखी होने के बाद में भी संसार को दुख का कारण नहीं मानते। हम ये कहते हैं कि हम दुखी हैं, लेकिन दुख का कारण पैसे को दुख का कारण नहीं मानेंगे, संसार की और परिस्थितियों को दुख का कारण नहीं मानेंगे, क्योंकि हमने उस ज्ञान को व्यवहारिक नहीं बनाया। लेकिन हमारे महात्मा है, वो कहते हैं कि आप जैसे ही संसार को आप चिंतन करना शुरू कर देते हैं, वहीं से बंधन शुरू हो जाता है। गीता आपने पढ़ी है अच्छी तरह से, और गीता में एक दो महत्वपूर्ण श्लोक है। हालांकि पूरी गीता ही अद्भुत है अपने आप में, लेकिन कुछ चीजें वाकई लाजवाब। ध्याय तो विषयान पुंस संगस्ते शुपजायते संगात संजायते काम कामात क्रोधो विजायते क्रोधात भवति सम्मोह सम्मोहात स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो। ये क्या है? ये बंधन का परिणाम है। ये देखिए शुरुआत क्या है। ध्याय तो विषयान पुंस, जिस समय पर पुरुष विषयों का चिंतन करता है, यही है ना। ध्याय तो विषयान पुंस का मतलब क्या हुआ? जिस समय पर पुरुष विषयों का चिंतन करता है, ठीक है, ये बात याद रखना। अब यहां याद रखो, गुणेश रक्तम बंधाय, जिस समय पर पुरुष गुणों का यानी संसार का चिंतन करता है, वो क्या होता है? बांधने वाला होता है। बात आ रही है ना समझ में? ये व्यवहारिक बता रहा हूं आपको, व्यवहार करने के लिए बता रहा हूं कि गुणों का जिस समय, गुण माने संसार, क्योंकि त्रिगुणात्मक है प्रकृति, प्रकृति त्रिगुणात्मक है, तो जब गुणों का चिंतन करते हो, संसार का चिंतन करते हो, तो क्या होता है? बांधने वाला होता है। भगवान गीता में क्या कहते हैं? ध्याय तो विषयान पुंसः, जहां पर पुरुष विषयों का चिंतन करता है तो क्या होता है? ध्याय तो विषयान पुंसः संग, संग उत्पन्न हो गया, आसक्ति उत्पन्न हो गई। ये आसक्ति का उत्पन्न क्या है? बंध गया, आसक्ति उत्पन्न हुई। आसक्ति संग माने क्या है? आप चिपक गए। चिपकना यानी बंधन नहीं हुआ क्या? आप बंध गए, अब छूट नहीं सकते। आसक्ति हो गई, अब मुश्किल है छूटना। जहां विषयों का चिंतन किया, आसक्ति उत्पन्न हुई। आसक्ति की उत्पन्न होने के बाद में काम उत्पन्न हुआ। काम का मतलब, काम यहां दूसरा काम नहीं समझ लेना, काम का मतलब पाने की इच्छा, कामना। हा? अब हमें वो मिले, जिस पदार्थ का आपने चिंतन किया, रसगुल्ले का चिंतन किया, मान लो रसगुल्ला मन में आया और आपने ध्यान किया कि हमें चाहिए वो, तो आज संग पैदा हुआ, संग से फिर काम पैदा हुआ, वो मिले हमको और काम पैदा हो गया। अब नहीं मिला मान लो किसी वजह से, होना ही होना है, ये शाश्वत नियम है और ये होगा ही होगा। अच्छा आप सोचो कि रसगुल्ला नहीं मिलने से हमको ज्यादा क्रोध नहीं होता, क्योंकि वो इच्छा छोटी है। जितनी बड़ी इच्छा होगी उतना बड़ा क्रोध होगा। क्रोध भी इच्छा के अनुपात में पैदा होता है। छोटे बच्चों का छोटा गुस्सा, बड़े आदमियों का बड़ा गुस्सा। जैसे जैसे आपकी अभिलाषाएं बढ़ेंगी, जैसे जैसे आपकी कामनाएं बढ़ेंगी, जैसे जैसे आपकी इच्छाएं बढ़ेंगी, वैसी वैसी उसी अनुपात में आपका क्रोध भी बढ़ेगा। और ये ध्यान रखना, आप ऐसा मत सोचना कि सारी इच्छाएं आपकी पूरी होंगी। हजार पूरी हो जाएं तो हजार और खड़ी है रास्ता, लाइन में लगे हुए हा? और आप ऐसा मत समझना कि नहीं नहीं हजार नहीं खड़ी है इच्छाएं। मैं तो कहता हूं हजार नहीं, 10,000 10,00,000 खड़ी है। अनंत जन्मों की जो अतृप्त वासनाएं हैं वो हमारे मन में बैठी हुई है, नजर नहीं आती, दिखाई नहीं पड़ती। एक खत्म हुई दूसरी पैदा हो गई। इसलिए डॉक्टर के पास जब आप इलाज करवाने जाते हो तो इलाज करवा के ये मत समझना कि आप अब रोगी नहीं रहे। एक रोग ठीक हुआ, इस शरीर में हजारों रोग पड़े हुए हैं, कहीं भी कोई भी खड़ा हो सकता है। इसलिए डॉक्टर अनुसंधान, वैज्ञानिक अनुसंधान करते हैं कि हम सारे रोगों को दूर कर देंगे, नई नई बीमारियां पैदा हो जाती ना, फिर शुरू होते हैं, फिर मेहनत करते हैं। यही हाल हमारा है कि हम अनुसंधान करते हैं कि इस इच्छा को पूरा कर लेंगे, बस तृप्त हो जाएंगे, लेकिन फिर दूसरी ऐसी पैदा होगी कि जिसका कोई इलाज हमारे पास नहीं होगा। ऐसी इच्छा, ऐसी कामना पैदा होगी कि जिसकी इच्छा का कोई रास्ता हमारे पास में नहीं होगा, तो जरूर क्रोध पैदा होगा। और क्रोध क्रोध से सम्मोह, सम्मोह से स्मृति विभ्रम। हम आगे आपको कल बताएंगे, स्पष्ट करेंगे कि आगे क्या, और प्रणश्यति समाप्त हो गई, यही हमारे जीवन में होता है। तो इसको हम व्यवहारिक कैसे बनाएं, इस पर हम कल चर्चा करेंगे। एक छोटा सा भजन है, वो हम आपको जरूर सुनाना चाहेंगे। और भजन क्या है, बस यही है कि हे प्रभु फंस तो गई है, मुक्त आप ही कर सकते।
तुम मेरी राखो लाज हरी, तुम मेरी राखो, तुम मेरी राखो लाज हरी, तुम मेरी लाज हरी, तुम मेरी राखो लाज हरी, लाज हरी, तुम मेरी राखो लाज हरी, तुम मेरी, तुम जानत सब अंतर्यामी, तुम जानत, तुम जानत सब अंतर्यामी, तुम अंतर्यामी, करनी कछु न करी, करनी कछु न करी, तुम मेरी राखो लाज हरी, मेरी राखो। अब गुण मोसे बिसरत नाही, अब गुण, अब गुण मोसे बिसरत नाही, अब गुण मोसे बिसरत नाही, पल छिन घरी घरी, पल छिन घरी घरी, तुम मेरी राखो लाज हरी, तुम मेरी। दारा सुत धन मोह लिए हो, दारा मोहनी हो, दारा सुत धन मोहनी हो, दारा सुध बुध सब बिसरी, सुध बुध सब बिसरी, तुम मेरी राखो लाज हरी, तुम मेरी। सूर पतित को वेद उबारो, सूर पतित को वेद उबारो, सूर पतित को वेद उबारो, सूर वेद उबारो, वेद उबारो, वेद उबारो, वेद वेद उबारो, वेद को वेद उबारो, सूर पतित को वेद उबारो, अब मेरी नारू भरी, अब मेरी नारू भरी, तुम मेरी राखो लाज हरी, तुम मेरी राख लाज मेरी, तुम जानत सब अंतर्यामी, तुम जानत सब अंतर्यामी, करी कछु करी, करनी कछु करी, तुम मेरी राखो लाज मेरी, तुम मेरी राखो 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 लाज मेरी। श्री गुरुदेव भगवान की जय।
ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरि ओम।